23 نمبر کے رجسٹر میں 35 پیج پر 11889 کا کلاس چل رہا ہے دوسرے پیج کے مدھیہ میں. بتایا کہ کرمیندریاں تب بس ہوں گی جب یوگ میں پکے ہو جائیں گے. کرمیندریاں شانت ہو جائیں گی, اس میں بڑی محنت ہے. وہاں ایسے چیچی کام ہوتے نہیں ہیں جیسے چیچی کام یہاں کرتے ہیں. بات آئے ہیں ایسے سورگ دھام میں لے جانے کے لیے اور تم کو لائق بنائے رہے ہیں. مایا تم کو نالائق بناتی رہتی, یعنی چیچی کام کراتی رہتی, تو بجائے پکے یوگی ہونے کے کیا ہوتے ہیں, پھر اور ہی کچے ہو جاتے. سو گنا پاپ کا بوجھ ہزار گنا پاپ کا بوجھ چڑھ جاتا ہے کیونکہ باپ کی نافرمانی کی. تو باپ آئے ہیں ایسے سورگ دھام میں لے جانے, مایا تم کو نالائق بناتی ہے. سورگ و جیون مکتی دھام میں چلنے لائق بننے نہیں دیتی ہے. جیسے کوئی ویدیہ دوائی دیتا ہے اور کچھ پتھی بھی بتاتا ہے کہ یہ چیز نہیں کھانا, اور اگر کوئی مریض کھا لیتا ہے تو ویدیہ کو بتائے گا نہیں کیونکہ غلطی خود سے ہوئی ہے. تو ویدیہ کیا جانے, ویدیہ کے اوپر دوش آ سکتا ہے کیا؟ یا تو غلطی ہو پورا پوتا مل دینا چاہیے. پوتا مل بھی یہ نہیں کہ ایک بار دیا, دو بار دیا, دس بار دیا, بیس بار دیا, پوتا مل دیتے ہی رہے تو ڈاکٹر اور ناراض ہو جائے گا. یہ کیا, ہم دوائی دیتے رہتے ہیں اور تم آپتی کرتے رہتے ہو. تو مایا تم کو لائق نہیں بننے دیتی, تو باپ بیٹھ لائق بناتے. پھر باپ بھی اسی لیے بیٹھ جاتے ہیں کہ بچے لائق نہیں بنتے ہیں, مایا بار بار نالائق بنا دیتی ہے. تو باپ کیا کس لیے بیٹھتے ہیں پھر؟ اچھا اب ہم تم کو شکشا بیٹھ دیں گے. تو لائق بننے کے لیے پیورٹی ہے. فرسٹ گاتے بھی ہیں بابا ہم پتی تو بن پڑے, ہم کو آ کر کے پاون بناؤ. ایسے نہیں پڑھائی پڑھائی کے چلے جاؤ پھر ہم پاون بنتے رہیں گے, نہیں, آ کر کے پاون بناؤ. ایسے نہیں کہتے گیان سنانے کے لیے آؤ, ہے پتے تو پاون آؤ گیان سناؤ. کیا کہتے ہیں؟ بلانے کا اہم آدت کیا ہے؟ پتوں کو پاون بناؤ. پاون بنا پوتر گائن بھی ہے امرت چھوڑ دے کے کاہے کو کھائے. ان کا نام دکھ بھی ہے جو آدھی مدین سے دکھ دیتے, جو آدھی بھی سہیلا تو مدھیہ اور انت بھی سہیلا ہوگا. تو گیان امرت ہے سہیلا, سکھ دینے والا, آدھی میں بھی سکھ دیتا, مدھ میں بھی سکھ دیتا, انت میں بھی سکھ دیتا. اور وشے وکاس چن کا بیج جتنا بویا جاتا ہے, یہ بیج بونے کی سنگم یوگ میں جتنی شوٹنگ کی جائے گی اتنا آدھی مدھ اور انت دکھ ہی ملے گا. جیسے دنیا میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو باپ کو بھی آسکتی ہوتی ہے بیج بونے میں, اور ماں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. تو جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بچہ بھی روتا ہوا پیدا ہوتا ہے, جیون میں بھی دکھی رہتا ہے اور انت بھی دکھ سے ہلکورے لے کر کے شریر چھوڑتا ہے. لیکن ستیوگ میں تو ایسا نہیں ہوگا. وہاں جو بیجا روپن ہوگا وہ بھی سہج ہوگا. مکھ کے پیار سے بچہ پیدا ہوتا ہے, سیت اندریوں سے دستی کے اسنے سے سنتان پیدا ہوتی ہے, जैसे मोर मोरनी का मिसाल दिया हुआ है। आज भी भारतवर्ष में इसीलिए पवित्रता के कारण मोर को राष्ट्रीय पक्षी माना गया है। मोर में ऐसे नहीं कि देह अभिमान होता नहीं है, होता तो है लेकिन वो शेष इंद्रिय के द्वारा व्यक्त होता है, इसलिए वो देह अभिमान की पूछ का पंख आज भी कृष्ण के मस्तक पर लगाते। तो ये ड्रामा में दूध है, चाहे ऐसा बीज बो जिसमें आदि मध्य अंत दुख मिले, और चाहे ऐसा बीज बोलो जिसमें आदि में भी सुख, मध्य में भी सुखी और अंत में भी सुखी। बाप कितनी बार आए हैं, तुम बच्चों से आकर के मिले हैं और तुम्हें कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनाया है, आकर के ऐसे नहीं आकर के चले गए और तुम उत्तम पुरुष अपने आप बनते रहे। आत्मा पवित्र होती है, आय भी बड़ी हो जाती है, हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस सब मिल जाती है। किस आधार पर? चरित्र के आधार पर। ये भी तुम बोर्ड पर लिख सकते हो, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस फॉर 21 जनरेशन इन 1 सेकेंड। ब्रह्मा को विष्णु बनने में कितना टाइम? 1 सेकेंड। ये 50-55 वर्ष किस खाते में जाते हैं, किस खाते में गए? तो 50-55 वर्ष से भी ऊपर हो चुका, 1 सेकेंड पूरा नहीं हुआ। जरूर ब्रह्मा का जो प्रैक्टिकल पार्टधारी है उसे उस निराकार बाप जो कहते हैं निराकार भगवान उवाच, उसका अभी पक्का निश्चय नहीं हुआ। अगर पक्का निश्चय हो जाए कि यही वह निराकार भगवान है जो उवाच करता है, तो उस 1 सेकंड में ही ब्रह्मा को विष्णु बनकर के संसार में प्रत्यक्ष हो जाए ब्राह्मणों की दुनिया में। इक्कीसवां जन्म शुरू हो जाए, 21 जन्मों में से पहला जन्म जिसे हीरा समान जन्म कहा जाता है, जिसमें हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस तीनों ही आ जाते हैं। आत्मा जो संपन्न होगी तो शरीर के रोग भी भाग जाएंगे, आत्मा असंपन्न होती है तो शरीर के रोग भी आते हैं। ये तो भक्ति मार्ग में भी ये गायन चला आ रहा है, राम कृपा नाश है सब रोग जो यही भांति बने संयोग, संपूर्ण संयोग माने संपूर्ण, योग माने योग। जब संपूर्ण योग लगता है तो शरीर के रोग भी सब भाग जाते। तो बाप से ये वर्षा मिलता है 21 जन्मों पर। कई बच्चे बोर्ड लगाने से भी डरते हैं, बोर्ड तो सबके घर पर रहता ही है क्योंकि तुम सर्जन के बच्चे हो ना, तुमको हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब मिलती है तो तुम फिर औरों को दे सकते हो। तो जब दे सकते हो तो क्यों नहीं बोर्ड पर लिख देते हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस फॉर 21 जनरेशन? तो बोर्ड पे लिखेंगे तो दूसरों को समझाना भी पड़ेगा कि 21 जन्म कौन से, पहले तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों को समझाना पड़े, 8 जन्म सतयुग के, 12 जन्म त्रेता के और 21वां जन्म जिसमें हेल्थ भी हो वेल्थ भी हो और हैप्पीनेस भी हो, वो कहाँ? तो वो भी यहाँ होना चाहिए ना। अभी कोई ऐसा है जिसको शरीर की व्याधि ना आती हो? नहीं। तो फिर 21वां जन्म कौन सा? तो ये समझाना पड़ेगा।
किसको?
ब्रह्मा कुमार कुमारियों की दुनिया में पहले ये समझाना पड़े कि परमात्मा बाप से इसी जन्म की हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस कैसे मिलती है। तो जब समझाना पड़े तो प्रैक्टिकल करके दिखाना भी पड़े। जो खुद प्रैक्टिकल करके दिखा नहीं सकता तो समझाना ना समझाना बेकार हो जाएगा, इसलिए फिर बोर्ड भी नहीं लगा सकते। इसलिए बच्चे डरते हैं।
किस लिए डरते हैं?
हैं? हाँ, क्योंकि प्रैक्टिकल जब करके दिखाए अपने माथे पर बोर्ड लग जाए तो फिर स्थूल बोर्ड भी लगाया जाए। जब प्रैक्टिकल झंडा ऊंचा हो जाए त्रिमूर्ति का चैतन्य में तो स्थूल झंडा भी लगाए। बाकी ये कपड़े के झंडे लगाने से तो कोई फायदा होने वाला नहीं। तो बोला कि बच्चे डरते हैं, वैसे तुम बच्चे लिख सकते हो बोर्ड पर तो मनुष्य आकर के समझे। भारत में आज से 5-4 वर्ष पहले हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस पवित्रता थी। बेहद के बाप का वर्षा 1 सेकंड में मिलता है, तुम्हारे पास बहुत आएंगे। तुम बैठ समझाओ, यही भारत सोने की चिड़िया थी, इन्हों का राज्य था, फिर ये कहां गए? ये नंबर वन है ना। कौन? लक्ष्मी नारायण की तरफ इशारा करते। ये लक्ष्मी नारायण नंबर वन है ना, इसका मतलब और भी नंबर लक्ष्मी नारायणों के हैं। यही फिर लास्ट में आते हैं। बाप कहते हैं अब तुम्हारा 84 का चक्र पूरा हुआ, फिर शुरू होना है या हो चुका? होना है। शुरू हो जाने का मतलब 21वां जन्म हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस 100% वाला शुरू हो गया। तो वो तो अभी नहीं कहा जा सकता। बेहद का बाप ही आकर के ये पद प्राप्त कराते हैं, सिर्फ कहते हैं तुम मुझे याद करो तो पावन बन जाएगी। 84 जन्मों को जानकर बाप से वर्षा लेना, परंतु पढ़ाई तो चाहिए। तुमको कहा जाता है सुदर्शन चक्रधारी, नया तो कोई समझ नहीं सकता ये सुदर्शन चक्रधारी क्या होता है। तुम जानते हो स्व आत्मा को कहा जाता है, यानी आत्मा 84 के चक्र में कैसे आती है। हमारी अपनी अपनी आत्मा 84 के चक्र का पार्ट कैसे बजाती है, उन बातों का मनन चिंतन मंथन करना, वही है सुदर्शन चक्रधारी। इस कार्य में सबसे पहले आगे आगे कौन सी आत्मा जाती है? जिनको चित्रों में संपन्न स्टेज में दिखाया गया है सुदर्शन चक्रधारी। चक्र किसको दिखाते हैं? विष्णु को दिखाते हैं, कृष्ण को दिखाते हैं। तो जरूर विष्णु के रूप में जो 4 सहयोगी भुजाएं दिखाई गई हैं आत्माएं, वो अपने आत्मा के 84 के चक्र को पहले मनन चिंतन मंथन के द्वारा जान लेती, इसलिए उनका चित्र दिखाती है। तो हम आत्मा जो पवित्र थी, शुरू से लेकर 84 का चक्कर लगाया, वो भी बाप बतलाते। तुम पहले पहले शिव की भक्ति शुरू की, तुमने तुम किससे कहा जाता है? जो सामने बैठा होता है उससे तुम कहा जाता है। तो बाप सन्मुख जिन बच्चों को कहते हैं कि तुमने पहले पहले शिव की भक्ति की शुरू, बाकी ने नहीं की। क्योंकि कुछ ऐसी भी आत्मा है जो द्वापर युग के आदि से ही इब्राहिम आया और उसके प्रभाव से प्रभावित होकर के दूसरे धर्म में चली गई और उन्होंने अब विचारी भक्ति शिव की नहीं कर सकी। ढेर देवताओं की मूर्तियों की भक्ति करने लग पड़ी और अब विचारी भक्ति से महरूम हो गई। तो अब विचारी भक्त थी। बाप के सिवाय इन बातों को कोई समझा नहीं सकता। باپ کہتے ہیں میٹھے میٹھے بچوں تم نے پہلے پہلے یہ جنم لیا ہے.
کون سا جنم؟
اس کا بھی فاؤنڈیشن کب پڑا؟ اب بھی بیچاری بھکتی کر. جس میں کوئی دوسرے کی بھکتی نہیں کی یہ فاؤنڈیشن کب پڑا؟
یہ فاؤنڈیشن بھی سنگم یوگ پر پڑتا ہے.
جو تم بچے باپ کے سنمکھ بیٹھنے والے ہو، 21 جنم پورے لینے والے، 21 جنموں کا ورثہ لینے والے، وہ بچے 4.5 لاکھ ہیں. جو ڈائریکٹ باپ کے سنمکھ بیٹھ کر ایک کو ہی دیکھتے ہیں، ایک کو ہی سنتے ہیں، ایک سے ہی بات کرتے ہیں. دائت پیدا کرنے والا کوئی دوسرا دھرم پتا ان کو گائیڈنس نہیں دے سکتا. تو ایسی ابھی بیچاری شوٹنگ سنگ جگہ پر ہوتی ہے، اور جو بے بیچاری ہوتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ وہ دائت پیدا کرنے والے ہیں. ایک بات مانیں گے مت کی سری مت کی، اور ایک بات نہیں مانیں، ساری باتیں ان کو اچھی نہیں لگیں گی. تو تم بچوں نے پہلے پہلے یہ جنم لیا ہے، میٹھے میٹھے بچوں نے. میٹھے میٹھے کیوں کہتے ہیں؟ جب بھی مرلی شروع کریں گے میٹھے میٹھے بچوں کو، روحانی بچوں کو، بے حد کا باپ بے حد کے بچوں کو سمجھاتے ہیں. شروعات میں یہ یاد کیوں دلاتے ہیں؟ کیونکہ جو میٹھے بچے ہوں گے وہ باپ کا منہ کڑوا کر کے کب نہیں جائیں گے. ایک بار باپ کے بچے بنے تو دھوکہ کبھی نہیں دیں گے. باپ کہتے ہیں کوئی ساہوکار ہوگا تو کہے گا نا کہ آگے جنم میں اس نے اتنا ایسا کرم کیا ہے جو ساہوکار بنا. تو رام راجا، رام پرجا، رام ساہوکار کہا جاتا ہے. تو یہ کرم بھی کب کیے رام نے؟ جو راجا بھی بنا، پرجا ورگ میں بھی گیا، ساہوکار بھی بنا، یہ فاؤنڈیشن کب پڑتا ہے؟ ضرور سنگم یوگ پر ان سب باتوں کا فاؤنڈیشن پڑتا ہے، کیونکہ رام والی آتما تو سب کا بیج ہے، ساہوکاروں کا بھی بیج ہے، راجاؤں کا بھی بیج ہے، اور پرجا کا بھی وہی بیج ہے. کوئی روگی ہوگا کہیں گے پچھلے کرم کا حساب کتاب ہے. اچھا لکشمی نارائن نے کون سی کرم کیے جو یہ نیروگی بنے؟ کون سے کرم کیے جو مکھی کرم کیا جس سے تیاگ، تپسیا اور سیوا تینوں کے لائق بنے؟ وہ ہے یاد. ایک باپ کی اب بھیچاری یاد، اب بھیچاری یاد سے ہی روگ نہیں آتے. دودھ میں ملاوٹ ہوگی تو دودھ جلدی خراب ہوگا. دودھ جتنا ہی پیور ہوگا اتنے زیادہ سمے تک وہ رہ سکے گا. تو ملاوٹ ہونے سے کیڑے پڑتے ہیں. تو مکھی بات ہوئی اب بھیچاری بنے گی. باپ بیٹھ سمجھاتے ہیں ان کے اب 84 جنم پورے ہوئے، اب ان کو فرسٹ نمبر میں آنا ہے. راج یوگ بھگوان سنگم یوگ پر ہی آ کر کے سکھلاتے ہیں. ابھی تم سمجھ رہے ہو کہ بابا ہمیں راج یوگ سکھلائے رہے ہیں. نام کیا رکھا؟ راج یوگ، راجائی پراپت کرنے کا یوگ. ڈاکٹر پڑھاتا ہے تو پڑھنے والوں کو ڈاکٹر سے یوگ لگانا پڑتا ہے. وکیل پڑھاتا ہے تو پڑھنے والوں کو وکیل سے یوگ لگانا پڑتا ہے. اور یہاں کون پڑھاتا ہے؟ یہاں بھگوان پڑھاتا ہے. تو بھگوان پڑھائے گا تو بھگوان بھگوتی بنائے گا نا. لیکن واسطو میں بھگوان بھگوتی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ بھگوان تو ایک ہی ہوتا ہے، گاڈ از دی ٹروتھ، اور وہ ایک ہی ہوتا ہے. اگر دوسرا ہے تو بھگوان نہیں ہوتا، بھگوان تو اکیلا ہے. اور ستیہ بھی اکیلا ہے، ستیہ دو نہیں ہو سکتے. تو پھر راجیو کون سکھلاتا ہے؟
राजयोग सिखलाने वाला राजा होना चाहिए स्वयं या भगवान होना चाहिए? जो राजा होगा वो राजा ही सिखलाएगा, डॉक्टर होगा तो डॉक्टर ही सिखलाएगा, टीचर होगा तो टीचर की ट्रेनिंग देगा। तो भगवान खुद राजा बनता है क्या? वो राजा राजा ही देने वाला है कि लेने वाला है? देगा कहाँ से जब खुद ही नहीं करता है? है तो जिस तन में प्रवेश करता है उस तन के द्वारा ऐसा तनधारी आत्मा जो इस सत्य रूपी रंगमंच पर कभी अधीन होने के स्वभाव वाली नहीं होती, ऐसे ऐसे भी नमूने हैं भारतवर्ष की हिस्ट्री में जिन्होंने कभी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की, अपने लौकिक बाप की भी अधीनता स्वीकार नहीं की। शिवाजी का नाम, महाराणा प्रताप का नाम, बाबर का नाम, तो ऐसी ऐसी पुरुषार्थी आत्माएं नंबरवार हुई है भारतवर्ष में जो आधीन होने के स्वभाव संस्कार वाली नहीं रही। तो उनमें जो अव्वल नंबर वन आत्मा है उसी आत्मा में परमात्मा बाप प्रवेश करके राजाई का वर्षा बच्चों को नंबरवार देते हैं, राजाई की पढ़ाई पढ़ाते हैं, बाकी परमात्मा बाप शिव राजाई स्वयं नहीं करते। तो अभी तुम बच्चे राजयोग सीख रहे हो, बाप सिखलाए रहे हैं, फिर तुम भूल जाओगे। क्या तुम्हें याद रहेगा? 21 जन्म में तो याद रहने की बात ही नहीं, लेकिन 63 जन्मों में भी याद नहीं रहता। उसके साथ हम पार्ट भी बजाते रहते हैं हीरो पार्टधारी के साथ, लेकिन हमें पता नहीं पड़ता कि हमको स्वाधीन बनाने वाला कौन है और पराधीन बनाने वाला कौन है। क्योंकि पराधीन बनाने वाली आत्माएं भी 63 जन्म में हमारे संसर्ग संपर्क में आती है, तो तुम भूल जाएंगे। कर्म अकर्म और विकर्म की गुही गति भी बाप ने समझाई। रावण राज्य में तुम्हारे कर्म विकर्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यह था राजा तथा प्रजा। जब राजा ही विकर्म करने वाला है, पाप कर्म करने वाला है, धर्म का राजा नहीं है, अधर्म का राजा है, तो जो प्रजा होगी वो भी अधर्म करने वाली ही बनेगी। जैसा रचयिता होता है वैसी ही रचना बनती है। लेकिन स्वर्ग में तुम्हारे कर्म अकर्म होंगे। रावण राज्य ही नहीं ना, विकार होता ही नहीं, यहाँ है योग बल। जबकि योग बल से हम विश्व के मालिक बनते हैं तो जरूर पवित्र दुनिया भी चाहिए। पुरानी दुनिया को अपवित्र और नई दुनिया को पवित्र दुनिया कहा जाता है। वो है वाइसलेस वर्ल्ड और ये है विशेष वर्ल्ड। बाकी आकर के वैश्यालय को शिवालय बनाते हैं। शिवालय की क्या विशेषता और वैश्यालय की क्या विशेषता? वैश्यालय में वैश्या के घर को वैश्यावृत्ति का स्थान इसलिए कहा जाता है कि वो व्यभिचारी होती है। अनेकों के संसर्ग संपर्क में आने से उसको अनेकों के अंदर में चलना पड़ता है, तो उसे वैश्यालय कहा जाता है उस घर को। और शिवालय, शिवालय में सिर्फ एक शिव ही बैठा हुआ है और आसपास सारी ही देवताओं की मूर्तियां बैठी हुई है। छोटे बड़े देवताएं सब प्रकार के हैं, लेकिन सब किसकी पूजा करते हैं, किसके ध्यान में बैठे हैं? एक बाप के ध्यान। तो ऐसा शिवालय बाप आकर के बनाते हैं। रावण में ताकत नहीं है जो ऐसा शिवालय बना सके। क्यों? क्योंकि उसके स्वभाव संस्कार में व्यभिचार भरा हुआ है। द्वापर युग से जितने भी विदेशी धर्म पिताएं आए उन सब ने आकर के इस बात को तरजीह दी कि अनेक शादियां करो, बार बार तलाक देना और ढेर सारे बच्चे पैदा करना। तो वो है व्यभिचारी दुनिया। व्यभिचार से कभी बुद्धि एकाग्र नहीं हो सकती। अब व्यभिचारी बुद्धि ही एकाग्र हो सकेगी। इसलिए बाप आकर के शैलालय बनाते हैं और मनुष्य गुरु आकर के वैश्यालय बनाते हैं। शिव बाबा आकर तुमको सतयुग के लिए लायक बनाए रहे। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर के तुम पूछ सकते हो, आपको मालूम है इन्हें लक्ष्मी नारायण ने यह पद कैसे पाया? कैसे का जवाब क्या हुआ? जरूरी है बुद्धि योग से अव्यभिचारी बने। योग बल से इन्होंने विश्व की बादशाही प्राप्त कैसे की? एक बाप दूसरा न कोई। इसका मतलब ये नहीं जंगल में जाकर के रहे। जंगल में रहने की बात नहीं, रहना तो सबके साथ है। ऐसे समझना है जैसे सारी दुनिया हमारा कुटुंब है, लेकिन बुद्धि योग एक बाप के साथ, एक लव्य, एक को लव करने वाला विश्व के मालिक ये ऐसे बने। बाप कहते हैं तुम नहीं जानते हो और हम ये बात जानते हैं, तो मैं ही आकर के तुमको ये सिखाता हूँ। बच्चे माँ में एकम याद करो। तुम बाप के बच्चे भी कह सकते हो कि हम आपको बता सकते हैं इन्होंने ये पद कैसे पाया है? ये बात भी बच्चे कौन कह सकते हैं? जो डायरेक्ट बाप के बच्चे बनते हैं वो ही कह सकते हैं। 84 जन्म लेने वाले, जो 84 जन्म लेने वाले बच्चे नहीं बनते हैं, कुछ न कुछ कमी रह जाती है, वो बच्चे ये बात नहीं समझा सकते। यानी लक्ष्मी नारायण ने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं। फिर पुरुषोत्तम संगम के ऊपर आकर के बाप ने राजयोग सिखलाया और राजाई दी। उसके पहले नंबर 1 पति थे कौन? जब राजाई मिली 21 जन्मों में से पहले जन्म में, तो नंबर 1 पावन और उस जन्म से पहले नंबर 1 पति, फिर नंबर 1 पावन बने। क्योंकि सारी राजधानी है ना, अकेले तो नहीं है। राजा जब पवित्र बने तो उसकी सारी प्रजा भी पवित्र बने। यथा राजा तथा प्रजा, तुम्हारे चित्रों में सब क्लियर है। उनको राजयोग किसने सिखलाया? ऊंचते ऊंच है ही परमात्मा, देवता है तो सिखला ही नहीं सकते। भगवान ही सिखलाते हैं, जिसको नालिस फुल कहा जाता है। बाप टीचर भी है, सतगुरु भी है, ये विशेषता है। दुनिया में ऐसे नहीं होता कि बाप टीचर भी हो और गुरु भी हो। टीचर अलग होते हैं, बाप अलग होता है और गुरु अलग होते हैं। और यह एक ही स्वरूप में बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है, एक ही स्वरूप से। तो ये नंबर 1 दुर्गति में था, अब फिर इसको सतयुग में जाना है। लास्ट तो नंबर 1, क्योंकि चक्र फिरता है, है कितना सहज है। मंदिर बनाने वालों से जाकर तुम पूछ सकते हो, शुरू से शिव की भक्ति जिसने की होगी वो ही सहज समझ सकेंगे। जिन्होंने शुरू से भक्ति नहीं की होगी, दूसरे धर्म में कन्वर्ट होकर के चले गए होंगे, वो फिर इन बातों की गहराई को नहीं समझ सकेंगे। उनसे पूछो, लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाने वालों से, आपने ये मंदिर बनाया है, उन्होंने ये पद कैसे पाया? लक्ष्मी नारायण कैसे विश्व के मालिक बने, सतयुग के मालिक बने? इनों का राज्य था ना, फिर ये कहां गए और अभी ये कहां है? तुम 84 की कहानी बताओ तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। ये चित्र आपकी पॉकेट में पड़ा हुआ हो, 84 जन्मों की कहानी का ये चित्र, कि कैसे पहले जन्म में नंबर 1 पावन और आखिरी जन्म में नंबर 1 पतित ये चित्र हमेशा पॉकेट में पड़ा रहे। कौन सा चित्र? बैज का चित्र। ये बैज नहीं जो विदेशियों वाला बनाए रखा है बिंदु, ये तो देहधारी गुरुओं ने बनाया है। बाबा का बनाया हुआ बताया हुआ चित्र कौन सा है बैज में? एक तरफ त्रिमूर्ति और दूसरी तरफ लक्ष्मी नारायण। उस त्रिमूर्ति में पतित स्वरूप भी बैठा हुआ दिखाया गया और पावन स्वरूप भी बैठा हुआ दिखाया गया और पतित को पावन बनाने वाला भी बैठा हुआ दिखाया गया। तीनों के चित्र हैं। तो तुम किसको भी समझा सकते हो, तुम समझ जाएंगे कि ये हमारे कुल का है या नहीं। कैसे समझेंगे है? हाँ, अगर उसको समझता है, जचता है तो हमारे कुल का है। हमारे संकल्पों का खून और उसके संकल्पों का खून एक हो गया। और अगर समझाने से नहीं समझता है तो इसका मतलब हमारे खून का नहीं है।
23 नंबर के रजिस्टर में 35 पेपर 12-8 नवासी का पैसे क्लास। मीठा मीठा बेहद का बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते, ये तो समझते हो ना? बहुत मीठा मीठा बाप है,
देवताएं तो पवित्र थी।
ड्रामा के प्लान अनुसार फिर वह हिंदू कहलाने लगे। वास्तव में हिंदू धर्म तो है नहीं, हिंदुस्तान तो नाम बाद में पड़ा है, असली नाम है भारत। कहते हैं भारत माताओं की जय, हिंदुस्तान की माताएं थोड़ी कही जाती। भारत में ही राजी था, भारत की ही महिमा करते हैं। वो बाप बच्चों को सिखलाए रहे हैं, बाप को कैसे याद करें? सिखलाने की क्या बात है? तो हिंदुस्तान नाम बाद में रखा है, हिंदुस्तान माता नहीं कही जाती है, भारत माता कही जाती है। भारत माता की जय। बाप भारत को आकर स्वर्ग बनाते हैं, तो बाप बच्चों को सिखलाए रहे हैं, बाप को कैसे याद करना? बाप आए ही हैं घर ले चलने के लिए, इसको आत्माओं को
बाप कैसे सुनकर सीताएंगे? सर सीताए हो, सीताएं कितनी हो गई है? कितनी? फिर भी 500-600 करोड़ जो भी मनुष्य आत्मा है सब सीताएं हो गई ना? और पति का पावन सीताराम कर गए ना, तो राम बेचारे का नंबर कहाँ लगेगा जाके? 500-600 करोड़ तो सीताएं हैं और सीता का नंबर पहले और राम का नंबर, राम का नाम गायन बाद में। पति का पावन सीताराम कहते हैं ना, तो सीता पहले और राम बाद में। तो 500 करोड़ सीताएं हो गई तो राम कहाँ लगेंगे जाके? सबसे लास्ट में लगेगा ना, ऐसा क्यों भाई? बाबा बच्चों को आगे करते हैं, यहाँ बाबा की तो बात ही नहीं। बाबा का तो नाम शिव बाबा है, राम बाबा कहीं कहा गया है? पति का पावन सिर्फ सीताएं की गायन करते हैं,
आत्मा की सीता, आत्मा आत्मा रूपी सीता बिना शरीर धारण किए कहीं बंधन में आती है। पांच सौ करोड़ मनुष्य आत्माएं जो है वो तो शरीर धारण करके फिर बंधन में आती है, और राम है एक और सीताएं हैं ढेर। और जब पतित पावन की बात आती है तो सीता का नाम पहले और राम का नाम बाद में, क्यों? पतित सीताएं हैं और पावन राम पावन एवर प्योर राम को कहेंगे या एवर प्योर शिव को कहेंगे। एवर प्योर शिव को कहेंगे तो जो एवर प्योर होगा वो ही तो पावन बनाएगा, राम कैसे बनाएगा? राम और कृष्ण ये तो खुद ही पति की भी बनते हैं और फिर पावन ही बनते हैं। जो बाप के संग थे अगर जो बाप इनमें प्रवेश न करे तो ये भी पति से पावन नहीं बन सकते, इनको भी पावन मिलती है। तो सीता का नाम पहले इसलिए कि पति तो पावन की शक्ति या पावन से पति बनने की शक्ति तब ही चलती है जब दो हों। दो का मेल होगा तो बैटरी चार्ज होगी या डिस्चार्ज होगी, अगर मेल नहीं होगा साकार में तो न बैटरी चार्ज हो सकती है और न डिस्चार्ज हो। व्यापारी रूप से पति तो कैसे बने? संग लगा ना, साकार में संग के रंग में आए ना, हाँ वहाँ अनेकों के संग का रंग लगता रहा तो दिनचारी बनने से बैठी दिनचारी और संग मिल गया। सारी दुनिया को ये नियम आज पीछे अपनाना पड़ेगा, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा नहीं। लेकिन शिव बाबा जब बाबा कहा तो जरूर साकार का मेल है, सिर्फ ज्योति बिंदु हो तो वो बात है, क्योंकि दूसरे संबंध तब बनते हैं जब शरीर में प्रवेश करते हैं। तो शरीर में प्रवेश करने पर सवाल उठता है किस शरीर के द्वारा पतितों को पावन बनाते हैं, तो नाम शरीर के ऊपर पड़ता है, नाम आत्मा के ऊपर नहीं पड़ता है। ये तो एक ही नाम है जो आत्मा के ऊपर पड़ता है, कौन सा? वो कभी नहीं बदलता, जब तक वो बिंदु है तब तक नाम शिव है, और जब शरीर में प्रवेश करता है तो नाम बदल जाता है। तो जिसके शरीर में प्रवेश किया उसका नाम क्या पड़ा? राम, सर्व का सर्व पिदाता राम, और पति से पावन सीता। लेकिन राम भी अकेला पति से पावन न बन सकता है और न बना सकता, उसको भी आधार लेना पड़े साकार में। घर चलाने के लिए अगर सारी वसुधा ही कुटुंब है तो उसका भी संचालन करने के लिए प्रवृत्ति मार्ग में कोई न कोई सहयोगी बनाना पड़े। तो जो अव्वल नंबर सहयोगी बनती वो अव्वल नंबर की है, बाकी जो जिस नंबर में सहयोगी बनती आत्मा वो उस नंबर की सीता। तो सीताएं तो ढेर हैं और राम राम है एक, तो राम का नंबर बाद में क्यों, सीता का नंबर पहले क्यों? हाँ जब सीता कहा गया तो जरूर स्त्री रूप है और सजनी रूप है, तो जो भी सजनिया है
वो राम बाप की सगनिया रावण की जेल में फंसी हुई है और रावण के कंधे में सब है, आधीन सब है, और आधीनता से परे सिर्फ एक वो ही हो सकता है जिसमें शिव बाबा प्रवेश करते, लेकिन उसको भी पति के पावन बनने के लिए सहयोग चाहिए। विकार के लिए कभी वो पहल नहीं करते, इसलिए बताया कि जब तक इतनी शक्ति शिव की शक्तियाँ आगे न रहें और उनको आगे न किया जाए तब तक पुरुष पावन नहीं बन सकते। इसलिए शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि देवताएं गाय की पूंछ पकड़ करके स्वर्ग में चढ़े, नहीं तो नहीं तो नीचे गिर जाते। गाय की पूंछ का आसरा न लेते तो क्यों आसरा लेना पड़ा? क्योंकि श्रद्धा विश्वास और भावना जितनी कन्या माताओं में होती है उतनी पुरुषों में नहीं होती। इसलिए बाबा ने ज्ञान देने के लिए निमित्त बनाया सिर्फ माताओं को, जिनमें पवित्रता की भावना हो, पवित्रता के वाइब्रेशंस होंगे, वो ही आगे बढ़ा सकेंगे। बाकी शिव बाबा की तो बात अलग है, शिव बाबा तो है ही अगर प्योर। तो बताया कि मनुष्य तो सिर्फ गाते रहते हैं पति पावन सीताराम, लेकिन अर्थ को नहीं समझते।
बात कहते तुम सब सीताएं हो और हम हैं राम, सब भक्तों का सदगति दाता मैं हूँ, सब की सदगति कर देते, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाते। सत्युग में दूसरा धर्म कोई होता नहीं, सिर्फ हम ही होते, क्योंकि हम ही बाप से वर्षा लेते हैं। यहाँ तो देखो कितने ढेर के ढेर बंदे रहे, कितनी बड़ी दुनिया है, क्या क्या चीजें वहां, ये कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ भारत ही होगा, ये रेल आदमी नहीं होगी, ये सब खत्म हो जाएंगे, वहां रेल की दरकार ही नहीं, छोटा शहर होगा, रेल तो चाहिए दूर दूर गांव में जाने के लिए, दूर दूर गांव में जाने के लिए रेल चाहिए और हवाई जहाज एरोप्लेन तो चाहिए ना दूर दूर जाने के लिए, तो एरोप्लेन होंगे रेल नहीं होगी। बाबा रेफरेंस कर रहे हैं, भिन्न भिन्न पॉइंट समझाते रहते हैं बच्चों के लिए। यहाँ बैठे हो बुद्धि में सारा ज्ञान, जैसे परमपिता परमात्मा में सारा ज्ञान भरा हुआ है जो तुमको समझाते रहते हैं। ऊंच से ऊंच शांति धाम में रहने वाला, शांति का सागर है बाप, हम आत्माएं भी सब वहां स्वीट होम में रहने वाली है। शांति के लिए मनुष्य कितना माथा मारते, साधु लोग भी कहते हैं मन की शांति कैसे मिले, क्या क्या युक्ति रखते हैं। गाया जाता है आत्मा तो मन बुद्धि सहते हैं, उनका स्वधर्म है शांति। अगर मुख नहीं, कर्मेंद्रिया नहीं, तब तो जरूर शांति होगी। हम आत्माओं का निवास स्थान है चीजों जहाँ बिल्कुल शांति है, फिर वहां से पहले हम आते हैं सुखधाम में। अभी तो इस दुखधाम में ट्रांसफर होते हैं
सुखधाम से, नहीं दुखधाम से ट्रांसफर होते हैं दुखधाम में। बाप पावन बनाए रही, कितनी बड़ी दुनिया है, इतने जंगल आदि कुछ भी वहां नहीं होंगे, इतनी पहाड़ियां आदि कुछ भी नहीं होंगी, हमारी राजधानी होगी। जैसे मॉडल छोटा सा स्वर्ग का बनाते हैं वैसे छोटा सा स्वर्ग होगा। क्या होना है तो बंदर देखो कितनी बड़ी सृष्टि है, या तो सब आपस में लड़ते रहते हैं, फिर इतनी सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, बाकी हमारा राज्य रहेगा। इतना सब कुछ खत्म हो करके ये सब कहाँ जाएंगे, समुद्र धरती ये सब कहाँ जाएंगे। इनका नाम निशान भी नहीं रहे, इनका समुद्र नहीं रहेगा, है समुद्र तो रहेगा, धरती भी रहेगी, लेकिन ये जो बढ़ी हुई धरती है वो नहीं रहेगी, इनका नाम निशान नहीं रहेगा। समुद्र में जो चीज जाती है वो अंदर ही खत्म हो जाती है, सागर हप कर लेता है, तत्व में और मिट्टी मिट्टी में मिल जाती। तीसरा देश तुम्हारी वहाँ नेचुरल ब्यूटी रहती, वहाँ लिपस्टिक आदि कुछ भी नहीं लगाते, तो तुम बच्चों को खुश होना चाहिए, तुम स्वर्ग के परिजादे बनते हो। ज्ञान स्नान नहीं करेंगे तो तुम देवता बनेंगे नहीं, और कोई उपाय नहीं है। बाप तो है सदा खूबसूरत, तुम आत्मा सांवरी बन गई हो, तुम्हारा मासूम तो बड़ा सुंदर, वो सुंदर मुसाफिर आकर के तुमको सुंदर बनाते हैं। बाप कहते हैं मैंने इनमें प्रवेश किया है, मैं तो कभी सांवरा नहीं बनता हूँ, बल प्रवेश करता हूँ लेकिन मैं सांवरा नहीं बनता हूँ, काला नहीं बनता हूँ, मेरे को लेप छेप नहीं लगता है। गीता ने भूल कर दी है, जो बाप के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया, इसको ही कहा जाता है एक अज भूल। इसकी शूटिंग कहाँ होती है, ये एक ही भूल है जिसकी शूटिंग होती है संगम युग में। कैसे शूटिंग कैसे हुई, कि गीता माता का भगवान गीता पति परमेश्वर गीता माता का पति बनकर आता है, तो पति है तो जरूर साकारी होगा, क्योंकि बाप के सिवाय आत्माओं के जो भी संबंध बनते हैं वो सब साकार में बनते हैं। तो गीता माता से पति पहले होगा ना, पति ही माता को एडॉप्ट करता है। तो यज्ञ के आदि में परमात्मा से बच्चे तो साकार स्वरूप में पहले प्रवेश करते हैं, और साक्षात्कारों का रहस्य समझाते हैं, इससे जानकारी का बीज बोते हैं, वो बीज बोने वाला स्वरूप हुआ गीतापति भगवान, और उससे पहली पहली रचना रची जाती है गीता माता, ब्रह्मा को अपनी बन्नी बना के, ब्रह्मा माना बड़ी माँ माने जगदम्बा। तो जगदम्बा एक ओरिजिनल और फिर जब वो शरीर छोड़ देती है तो तहसीलधारी जगदम्बा ब्रह्मा नाम दिया जाता है, परंतु तन तो पुरुष का था ना, टाइटल तो लिया कार्य करने के लिए, लेकिन नाम था ब्रह्म, ब्रह्मा मन बड़ी मा, वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, तो टाइटलधारी नाम था। एक्चुअली सजनी नहीं थी, तो जो सजनी है वो सजनी अगर ये कृष्ण को ही अपना पति समझ बैठे तो ये तो भूल हो जाए, और ये शास्त्रकारों ने सबसे बड़ी भूल कर दी। शास्त्रकारों ने जो भूल की उसकी शूटिंग यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में हो जाती। जो गीता का भगवान कृष्ण अर्थात दादा लेखराज के स्वरूप को समझ लेते हैं कि वो ही परमात्मा का स्वरूप है, लेकिन वास्तव में मुरलियों के ऊपर पहले जो लिखा होता था शिव बाबा याद है, और मम्मा ने जब शरीर छोड़ा तो उसके बाद लिखा जाने लगा, कहीं कहीं शुरुआत हो गई, मम्मा के सामने से भी ये शुरुआत हुई, क्योंकि मम्मा हॉस्पिटल में बहुत देर पड़ी रही थी बंबई। उस समय भी देहधारी गुरुओं को मौका मिला और उन्होंने पिताश्री शिव बाबा याद है से पहले लगा दिया। पिताश्री श्री शब्द बाद में इसलिए लगा कि ये बाद में श्रेष्ठ बनेगा, अभी श्रेष्ठ नहीं है, माना ब्रह्मा। तो ब्रह्मा का नाम मुरली में डालने का मतलब ये हुआ कि पिताश्री ब्रह्मा ही शिव बाबा हो गया, और यही भूल हो गई, यही भूल यहाँ होती है, और यही भूल फिर 2500 वर्ष के भक्ति मार्ग में होती है। तो ये एक ही भूल है जो कृष्ण साकार को गीता का भगवान बनाई दिया। ब्रह्मा का एक ही फोटो ऐसा नहीं होगा जो निराकारी स्टेज वाला हो, फोटो तो ढेर खींचे गए। धर्म पिताओं के फोटो में और ब्रह्मा के फोटो में साकार और निराकार का फर्क देखा जा सकता है। धर्म पिताएं सब होते हैं निराकार, क्योंकि बाप होता है निराकार और माता होती है साकार। बीज माना सूक्ष्म निराकार, और धरणी माने साकार, जिसमें बीज बोया जाता है। तो धरणी है माता और बीज है पिता। तो गीता में ये भूल हो गई जो बाप के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया। मतलब गीता है या भागवत है, उसमें जो भी ज्ञान है या जो भी कहानियां है, जो भी जीवन कहानी है, वो है सब बाप की प्रजापिता की कहानी, लेकिन नाम डाल दिया किसका? दादा लेखराज ब्रह्मा का नाम डाल दिया। तो बाप के बदले कृष्ण का नाम डाल देने से ये एक ही भूल सारी गड़बड़ कर देती। सारे विश्व को सुंदर बनाने वाला तो शिव बाबा है, उनके बदले जो स्वर्ग का पहला नंबर सुंदर बनता है उनका नाम डाल दिया। सारे विश्व को सुंदर स्वर्ग कौन बनाता है? शिव बाबा। और नाम किसका डाल दिया? जो पहले नंबर में बनने वाला है। कौन है बनने वाला? कृष्ण सत्युग में बच्चे के रूप में जो जन्म लेगा, उस कृष्ण बच्चे को जन्म देने वाला कौन होगा? कृष्ण बच्चा किसका बच्चा होगा? कोई बाप का बच्चा होगा ना,
तो जो उसका बाप है वो ही है सुंदर दुनिया बनाने वाला और सुंदर कृष्ण को जन्म देने वाला। प्रैक्टिकल में ये बात कोई समस्या थोड़ी है, भारत फिर सुंदर बनने का है। वो तो समझते हैं 40,000 वर्ष के बाद स्वर्ग बनेगा और तुम बताते हो सारा कल्प ही 5,000 वर्ष का। तो बाप आत्माओं से बात करते हैं, देह अभिमानियों से बात नहीं करते। कहते हैं मैं तुम्हारा आधा कल्प का मासूक हूँ, तो मुझे पुकारते आए हो हे पतित पावन आओ, आकर के हम आत्माओं को पावन बनाओ, आना पड़े काय के लिए, सिर्फ ज्ञान सुनाने के लिए। ऐसे नहीं कहते कि ज्ञान सुनाओ और चले जाओ, बुलाने का मकसद ही है, एम ऑब्जेक्ट ही है पतितों को पावन बनाना। ज्ञान तो सिर्फ समझने समझाने का साधन है, साध्य नहीं। तो जो पतित से पावन बनाने वाला है, आया हुआ है, उनकी मत पर चलना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। बाबा ऐसे नहीं कहते कि तुम धंधा आदि नहीं करो, नहीं, वो सब कुछ करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते, बाल बच्चों आदि को संभालते, सिर्फ अपन को आत्मा समझ मुझे याद करो, क्योंकि मैं ही पतित पावन हूँ। बच्चों की संभाल भल करो, बाकी अभी और बच्चे पैदा मत करो, ये पैदा हो गए हैं उनकी संभाल करने की छूट देते हैं। लेकिन मतलब ये हद नहीं है या बेहद में भी है? बेहद में क्या है, इसका बेहद अर्थ क्या है? हाँ, जो बाबा के बच्चे बन चुके हैं पहले उनकी संभाल करनी चाहिए कि और नए नए पैदा करने चाहिए? है? क्या करें, जो बाबा के बच्चे बन चुके हैं पहले उनकी संभाल करना, परिवार वालों के जो बड़े हैं परिवार वालों में उनका ये फर्ज हो जाता है। ये फर्ज नहीं है कि पैदा करते चले जाओ उनकी परवरिश हो पाए या नहीं हो पाए, भले परिवार से ही वंचित हो जाए। तो बच्चों की संभाल करो, बाकी अभी और बच्चे पैदा न करो। तो प्रश्न क्या पैदा होता है? प्रश्न पैदा होता है कि औरों को संदेश नहीं देंगे क्या? संदेश तो देंगे, तो अभी तक संदेश नहीं दे पाया। 5 करोड़ बच्चे नहीं है क्या? है तो जरूर, आत्मा है, 5 करोड़ आत्मा रूपी बच्चे हैं। आत्मा है नहीं बन पाते, आत्मा है सिर्फ कितने बनते हैं जो बाप से वर्षा लेते हैं। है? आत्मा जो बनते हैं वो सिर्फ बनते हैं 4.5 लाख आत्म की स्थिति में स्थित रहने वाले, और उनमें प्रवेश करने वाली आत्मा 4.5 लाख वो भी आत्म की स्थिति में स्थित हो जाती उनके संग के रंग से, यानी 9 लाख 9 लाख सितारे हैं जो आसमान में उनकी स्टेज में चमकते हैं, कयामत के समय में सारी विश्व में चमकेंगे। बाकी उनमें भी प्रजा है, बाप उनको पढ़ाते तो हैं,
वो डायरेक्ट बच्चे तो बनते हैं लेकिन पूरी पढ़ाई पढ़ते नहीं है तो प्रजा में चले जाते हैं या दासदासी बन जाते हैं, चंडाल बन जाते हैं, लेकिन बारह बच्चे सिर्फ कितने हैं 108 जो बाप से राजयोग सीख करके राजयोग का वर्षा लेते हैं। तो अब क्या करना है, नए नए बच्चे पैदा करने की कोशिश करनी है या जो बच्चे बाप के बन चुके हैं उनको आत्मिक रूप में स्थिर कराने की प्रैक्टिस करानी है? क्योंकि अब अगर बच्चा पैदा करेंगे तो वो याद आते रहेंगे, कनेक्शन वृक्ष के जड़ों से लेकर के अंत तक किसके साथ रखना अच्छा है? बाप तो होगा ही नहीं, शिव ज्योति बिंदु तो होता ही नहीं 5000 वर्ष में, होगी तो फिर भी मनुष्य आत्माएं, हाँ तो रामकृष्ण की आत्माएं उन दो के साथ ही तो कनेक्शन नहीं रहेगा, कनेक्शन तो औरों के साथ भी होंगे ना, इस दुनिया में रहेंगे तो ऐसी आत्माओं के साथ कनेक्शन रहे जो आदि से लेकर के अंत तक अपने धर्म के पक्के हों, वो अच्छा, या दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते जाए वो अच्छा। अपने धर्म में रहना श्रेष्ठ है, दूसरे का धर्म भयभीत करने वाला है, सुख देने वाला नहीं है। स्वधर्म निधनम से परधर्म उभयाव, ये बात मुरली में भी बाबा ने बोली कि अपने धर्म में रहना अच्छा है, दूसरे धर्म में धक्के नहीं खाने चाहिए, तो इसकी शूटिंग कहाँ होती है? यहाँ ही इसकी शूटिंग होती है। जो बाप के बच्चे बन चुके हैं उनकी परवरिश नहीं करना, जो बाप से वंचित हो चुके हैं बच्चे बनकर उनकी तरफ ध्यान नहीं देना, और नए नए बच्चे पैदा करते जाना। अरे जब श्रेष्ठ आत्माएं तैयार हो जाएंगी तो प्रजा तो अपने आप तैयार होगी, राजा के पीछे प्रजा अपने आप तैयार होकर के भागती है, प्रजा बनाने के लिए कोई विशेष पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, राजा तैयार होगा तो प्रजा भी तैयार हो जाएगी, जितना पावरफुल राजा तैयार होगा उतनी प्रजा स्वतः ही तैयार होगी। अब और बच्चे पैदा नहीं करो, नहीं तो वो याद आते रहेंगे। अब संबंध है, नए नए कनेक्शन नए नए संबंध बनाने का टाइम है, या जो संबंध बन चुके हैं उनसे बुद्धियों को तोड़ने का टाइम है? टाइम कौन सा चल रहा है? अभी तो तोड़ना है, नया नया जोड़ना नहीं है, जो जुड़ा हुआ है उससे भी बुद्धियों को तोड़ने का समय। अगर उल्टा किया तो फिर उल्टे हो जाएंगे। तो इन सब के होते हुए भी अब इनको भूल जाना, जो कुछ तुम देखते हो ये